सुललितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हम हमारे चैतन्य चरितामृत के 41वें सत्र में। कल हमने अंत्य लीला के अध्याय 17 और 18 इनकी चर्चा की थी। 17वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से महाप्रभु एक दिन अचानक रात के समय अपने घर से गायब हो जाते हैं और स्वरूप दामोदर आदि सब भक्त उन्हें जो है वो तैलंगी गाय जहां पर थी उस गौशाला में वो महाप्रभु को पाते हैं बिल्कुल अचेत अवस्था में और कूर्माकृति में महाप्रभु थे। उनके हाथ और पैर पेट के अंदर चले गए थे और इस प्रकार से उन्हें जब घर पे लाया गया और कीर्तन करके उन्हें सचेत किया गया उसके पश्चात महाप्रभु ने जो है वो आस्वादन किया। वो बताया उन्होंने सर्वप्रथम कि मैं वृंदावन गया था कृष्ण की वंशी मैंने सुनी थी और अभी मुझे नहीं सुनाई दे रही है और इस प्रकार से स्वरूप दामोदर आदि ने कुछ श्लोक सुनाए महाप्रभु ने उनका अर्थ बताया और इस प्रकार से आस्वादन उन्होंने किया। 18वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है एक दिन शरद महोत्सव की पूर्णिमा की रात को महाप्रभु भक्तों के साथ जब उद्यान से जा रहे थे और जब समंदर किनारे पर वो गए तब उन्होंने जो है वो देखा समंदर को उन्होंने यमुना ही समझा और उसमें छलांग लगा दी और रासलीला के सारे श्लोकों का वो वर्णन कर ही रहे थे। उसी समय जल क्रीड़ा का वर्णन चल रहा था राधा और कृष्ण के बीच में और अन्य गोपियों के साथ तो महाप्रभु उसी भाव में जो है वो छलांग लगा दिए समुद्र को यमुना सोचकर और उसमें वो डूबते रहे और किसी को मिले नहीं कहां तक। अगले दिन जब उन्हें सुबह सुबह जब स्वरूप दामोदर और वो ढूंढते ढूंढते समुद्र किनारे से जा रहे थे तभी एक मछुआरा आता है और वो रोता हुआ बिलखता हुआ हंसता गाता हुआ अपने जाला लेके आ रहा था और फिर वो बताता है कि एक प्रेत मुझे मिला हुआ है जिसको मैंने स्पर्श किया और भूत मेरे अंदर संचारित हो गया है इसके कारण मेरी यह दशा है। स्वरूप दामोदर बताते हैं कि अरे वो चैतन्य महाप्रभु ही है प्रेमोन्माद के कारण उनका शरीर जो है ऐसे लक्षण प्रकट करता है और कहते कि मैं एक मांत्रिक हूं कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं और झापट मार के उसे जो बाह्य चेतना में लाते हैं और फिर वो महाप्रभु को वहां से लेके समुद्र का स्नान करा के घर पर लेके आते हैं और महाप्रभु फिर बताते हैं उन्हें कि किस प्रकार से जल क्रीड़ा का वो जो है वो आस्वादन कर रहे थे राधा और कृष्ण इनके और वो सारा बताते हैं और किस प्रकार से जो है वो मैं वहां पर था मैं देख रहा था किस प्रकार से राधा कृष्ण भी सो रहे थे सारी सखियां जो है वो चामर व्यजन आदि कर रही थी और मैं देख ही रहा था और आपने यहाँ पे कोलाहल करके मुझे जो है वो सचेत कराया है। तो इस प्रकार से महाप्रभु जो है वो निरंतर ऐसी इतनी सारी लीलाएं किया करते थे। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि सब कुछ लिख पाना एक तो ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा लोगों के मन में डर रहेगा इसलिए मैं ज्यादा लीलाओं का वर्णन नहीं कर रहा हूं और ये भी कहते हैं कि इतनी लीलाएं महाप्रभु किया करते थे कि एक दिन में जितनी लीलाएं महाप्रभु किया करते थे, यदि गणेश अनंत काल तक लिखते रहे और अनंत शेष अनंत काल तक गाते रहे तो भी वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिव्य उन्माद और जो प्रलाप है उसका वर्णन जो है वो केवल एक दिन का भी महाप्रभु के लीलाओं का नहीं कर सकते। तो ये है महाप्रभु की दिव्य लीलाएं। आज हम अंत्यलीला का 19वां अध्याय ले रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य व्यवहार। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ऐ मते महाप्रभु कृष्ण प्रेमावेशे उन्माद प्रलाप करे रात्रि दिवसे। इस प्रकार से महाप्रभु जो है वो दिव्य उन्माद करते हुए रात और दिन जो है वो बिताया करते थे। हमें पता है कि जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निकटवर्ती मित्र है, पार्षद है। हर साल महाप्रभु जगदानंद पंडित को नवद्वीप भेजा करते थे और अपनी माँ को सांत्वना दिलाने के लिए उन्हें भेजा करते थे, और जगन्नाथ जी का कुछ महाप्रसाद भी उनके साथ जो है वो भेजा करते थे। और एक बार उन्होंने इसी प्रकार से जगदानंद से कहा, क्या कहते हैं देखिए, अभी महाप्रभु सन्यासी होने के बावजूद माँ के प्रति उनका प्रेम क्या है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। इसलिए अलग अलग जगह पर महाप्रभु को अलग अलग शिरोमणि कहा गए हैं। दाता शिरोमणि, जो दान देने में सर्वश्रेष्ठ है, इसी प्रकार से इस वृत्तांत में कविराज गोस्वामी उन्हें कहते हैं मातृ भक्त शिरोमणि। जितने सारे माताओं के भक्त होते हैं उनमें भी वो अग्रज या शिरोमणि है। नदिया चलह माता रे कही है नमस्कार, अमर नामे पाद पद्म धरी है ताहार। नदिया जाएंगे आप तो माता को नमस्कार करना और मेरी ओर से खास करके उनके चरणों में वंदना करना। और कही है ताहारे, उन्हें कहना, क्या कहना, तुम्ही करह स्मरण नित्य आसी आमी तो माय वंदीय चरण। जब भी जो है वो आप ये स्मरण रखिए मेरी माता कि मैं हमेशा यहाँ पे आता हूँ और आपके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। ये दिन तुम्हार इच्छा कराईते भोजन से दिने आसी अवश्य करिए भक्षण। जिस दिन आपके मन में अभिलाषा होती है कि आज मैं निमाई को कुछ खिलाऊं, उस दिन मैं वहां पे जो है वो प्रकट हो जाता हूँ और आपके द्वारा दिया गया भोजन का मैं आस्वाद करता हूँ। तुम्हार सेवा छाड़ी आमी करिलू संन्यास, बाउल हैया आमी कैलू धर्म नाश। आपकी सेवा को छोड़कर मैंने बावला होकर जो है वो संन्यास लिया हुआ है और सारे धार्मिक सिद्धांतों का मैंने नाश किया हुआ है, क्योंकि आपकी जैसी माँ का मैंने जो है वो सेवा छोड़ दिया है। यही अपराध तुम्हें ना लही आमार तुम्हार अधीन आमी पुत्र से तो मार। लेकिन हे माते, मैं आपका पुत्र हूँ इसलिए इस बात का आप जो है वो अपराध बिल्कुल मत मानना। नीला चले आछी आमी तुम्हार आज्ञाते, यावत जीवत तावत आमी नारीब छाड़ीते। आपकी आज्ञा थी कि मैं नीलाचल में रहूं, इसलिए मैं नीलाचल में रह रहा हूं। और मैं आपको वचन देता हूं माते, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं नीलाचल छोड़ के नहीं जाऊंगा। और इस वचन का महाप्रभु ने दृढ़ता पूर्वक पालन भी किया। तो इस प्रकार से कविराज गोस्वामी ये वृत्तांत सुनाते हैं और कहते हैं कि उनके साथ और क्या क्या दिया था। जो परमानंदपुरी वो बड़े और बड़े सन्यासी है, वो भी आज्ञा दिए महाप्रभु को कि आप कुछ भेजिए माता के लिए। फिर जो है वो गोप लीला, जब जगन्नाथ जी की एक लीला होती है उसका प्रसादी वस्त्र उनके साथ भेजा गया माँ के लिए, और माँ के लिए अलग से छोटा सा थैली में पैक किया हुआ प्रसाद, अन्य भक्तों के लिए अलग अलग थैलियां, इस प्रकार से जो है वो महाप्रभु भेजा करते थे। अद्वैताचार्य के लिए अलग, शिवानंद सेन के लिए अलग, शिवास ठाकुर इनके लिए अलग, इस प्रकार से महाप्रभु सबके लिए अलग अलग जो है वो भेजा करते थे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। मातृ भक्त गणेर प्रभु हन शिरोमणि, संन्यास करिया सदा सेवे न जननी। मातृभक्त गणेर प्रभु, प्रभु जो है वो हमारे चैतन्य महाप्रभु, मातृभक्त जितने सारे मातृभक्त इस संसार में है, जो अपनी माँ को, माँ के बड़े भक्त अपने आप को मानते हैं, उन सब में महाप्रभु जो है वो शिरोमणि है। और संन्यास करिया सदा सेवे न जननी, संन्यास लेने के बाद भी उन्होंने अपनी माँ की सेवा जो है वो जारी रखी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब जगदानंद पंडित नदिया गए, उन्होंने वहां पर माँ को संदेशा दिया वहां पर वो अद्वैत आचार्य इनसे मिले और सारे भक्तों से मिले और लगभग एक महीने तक वो वहां पर रुके। और एक महीना होने के पश्चात जब उन्हें वापस लौटना था तो माँ से उन्होंने आज्ञा मांगी। उसके पश्चात अद्वैत आचार्य इनसे भी आज्ञा मांगी और आज्ञा लेकर निकलने ही वाले थे तभी अद्वैताचार्य ने उन्हें रोक लिया और अद्वैताचार्य कहते हैं उनसे कि मैंने एक छोटा सा काव्य रचना किया हुआ है, इसे कहते हैं दो अर्थ वाली पहेली। उस पहेली को आप लेके जाओ और महाप्रभु को सुनाओ। क्या थी वो पहेली? वो केवल चैतन्य महाप्रभु ही समझ पाए और कोई नहीं समझ पाया। आप प्रयत्न कीजिए, आपको समझ में आ रहा है तो। बाउल के कही लोक हईल बाउल, बाउल के कही हाटे नाविकाय चाउल, बाउल के कही काय नहीं आउल, बाउल के कही इहा कही अच्छे बाउल। तो ये पहेली का थी, इसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ है कि बाउल के कही उन प्रेम में उन्मादित महाप्रभु को बताओ लोक हईल बाउल, सारे लोग मदमत होके पागल हो रहे हैं, बाउल के कही उन्हें कहो हाटे ना बिकाए चावल, अभी बाजार में चावल नहीं बिक रहे हैं। बाउल के कही काये नहीं का आउल, इसका अर्थ है कि जो प्रेम में उन्मत्त लोग हैं उन्हें अभी भौतिक संसार में बिल्कुल रुचि नहीं हो रही है। और बाउल के कही इहा कही अच्छे बाउल, मतलब उन प्रेम में उन्मादित मदमत्त पागल चैतन्य महाप्रभु को बताओ कि यह संदेश अद्वैताचार्य एक पागल ने भेजा है। तो जगदानंद पंडित जैसे ही सुनते हैं, जगदानंद ने हंसने लगते हैं, क्या संदेश दिया है? लेकिन वो फिर वहां से वापस आते हैं, महाप्रभु को यह संदेश सुनाते हैं और महाप्रभु स्मित हास्य करके महाप्रभु कहते हैं कि ये तो उनका मेरे लिए आदेश है। स्वरूप दामोदर कहते हैं अरे महाप्रभु जो क्या संदेश दिया वो तो हमें समझ में नहीं आया, क्या कहा उन्होंने? चैतन्य महाप्रभु कहते कि देखो अद्वैताचार्य बहुत बड़े पूजक और आराधक है और सारे वैदिक शास्त्रों के विधि विधानों को बहुत अच्छे से जानते हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति होता है वो देवता की आराधना करने के लिए उन्हें बुलाता है, आराधना करता है कुछ समय और बाद में उस देवता की मूर्ति का विसर्जन करता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना गणपति, हम लोग बुलाते हैं, स्थापना करते हैं और बाद में विसर्जन करते हैं। उसी प्रकार से उपासना लागी देवेर करे न आवाहन, पूजा लागी कत काल करे न निरोधन। उपासना करने के लिए उन्हें आवाहन किया जाता है देवता को और कुछ समय के लिए आराधना की जाती है। पूजा निर्वाहन हैले पाछे करे न विसर्जन, तर जर न जाने अर्थ की बात आर मन। पूजा होने के पश्चात जो करते हैं और समाप्त करने का समय आ गया है, ऐसे जो है वो कौन बता रहे थे? अद्वैताचार्य, क्योंकि उन्होंने ही आह्वान किया था महाप्रभु को, इस धरातल पर बुलाया था प्रेमदान करने के लिए, बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, और वही अभी जो है वो कुछ समय तक आराधना की और अभी जैसे महाप्रभु कहे कि विसर्जन करा देते हैं तो अभी वो आज्ञा दे रहे थे ये गूढ़ रूप से कि अभी आपका अंतर्दान होने का जो है वो समय आ गया है। और जिस दिन से महाप्रभु ने यह संदेश सुना उस दिन से उनकी दशा और विपरीत हो जाती है। सही दिन हैते प्रभुर आर दशा होइल, कृष्ण रविच्छेद दशा द्विगुण बाढ़िल। उनकी दशा विपरीत हो जाती है और कृष्ण से विरह उनका जो है वो दो गुना और बढ़ जाता है। इसी प्रकार से रात और दिन महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के विरह भाव में हमेशा आलाप किया करते थे। एक दिन मथुरा को श्री कृष्ण छोड़ रहे हैं और सारी गोपियों से कृष्ण अभी उनके नजरों से ओझल होने वाले हैं, वही दृश्य महाप्रभु के सामने प्रकट होता है और महाप्रभु विलाप करने लगते हैं कि कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण गए, कोई रोको। स्वरूप दामोदर को पकड़ते थे, पूछते थे कृष्ण कहाँ है, रामानंद राय को गले पकड़ के रोते थे कृष्ण कहाँ है, और इस प्रकार से महाप्रभु आलाप किया करते थे। और श्रीमती राधारानी ने विशाखा को इसी प्रकार से एक श्लोक में पूछा कहाँ है वो कृष्ण, कहाँ है वो कृष्ण, और उस श्लोक का महाप्रभु जो है वो स्वयं आस्वादन करके अर्थ बताते हैं। व्रजेंद्र कुल दुग्ध सिंधु, कृष्ण ताहे पूर्ण इंदु, जन्मी कैला जगत उजोर। कांत्यमृत ये बापिये, निरंतर पिया जिये, व्रज जनेर नयन चकोर। व्रजेंद्र कुल दुग्ध सिंधु, जो नंद महाराज का कुल है वो एक दूध के सागर के समान है, कृष्णता है पूर्ण इंदु, और कृष्ण जो है वो पूर्ण चंद्रमा के समान है जो अभी उदय हुआ है इस सिंधु से, और जन्मी कैला जगत उजोर, और इस जगत में इस चंद्रमा ने उजाला फैलाया हुआ है। कांति अमृत ये बापिये निरंतर पिया जिये व्रज जनिर नयन चकोर। व्रजवासियों के लिए वो चंद्रमा है और उनके नयन जो है वो चकोर पक्षी के समान है। चकोर पक्षी जिस प्रकार से चंद्रमा से पोषण लेता है, उसी प्रकार से उन चंद्रमा रूपी कृष्ण को देख के जो है वो हमारे नयन तृप्त होते हैं और हम जीते हैं, ऐसा कहते हैं। सखी है कोथा कृष्ण करा है दर्शन, है सखी मुझे बताओ कृष्ण का दर्शन मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। क्षण के या हर मुख ना देखी ते फाटे बुक, शीघ्र देखा ना रहे जीवन। मुझे उनका दर्शन करने दो, क्षण भर भी मैं यदि उन्हें नहीं देखती हूं तो मेरा हृदय फट जाता है, और शीघ्र जल्दी दिखाओ मुझे नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। कृष्ण को मुझे जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ। एई व्रज रमणी का मार्क तप्त कुमुदिनी, निज करा मृत दिया दान। प्रफुल्लित करे ये कहा मोर चंद्र से, देखा सखी राख मोर प्राण। ए व्रज रमणी, ये सारी जो स्त्रियां हैं व्रज की, काम अर्क तप्त कुमुदिनी, मतलब काम रूपी सूर्य से तप्त होने वाले कुमुदिनी के समान है, और वो कहती है कि निज करामृत दिया दान, आपके कर कमलों का दान हमें दीजिए, उसका स्पर्श हमें कराइए जिससे प्रफुल्लित करे, हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। कहां मोर चंद्र से ही, वो चंद्रमा अभी कहां गया है, देखा सखी उन्हें दिखाओ और मेरे प्राणों की रक्षा करो, यदि उनको नहीं देखूंगी तो मेरे प्राण इस शरीर से चले जाएंगे। कहां से चूड़ा रठाम शिकी पिछर उड़ान, नव मेघे ये न इंद्र धनु। पीतांबर तड़ी द्युति मुक्ता माला बक पाती, नवा बुद्ध जिनी श्याम तनु। कहां है उनका वो मुकुट शिरोमणि जिसमें जो है वो बहुत सुंदर शिकी पिछर उड़ान, मतलब जो मोरपंख जो है वो उनके सर के ऊपर मंडराता है। नव मेघ ये न इंद्र धनु, नवीन मेघ में जिस प्रकार से इंद्र धनु होते हैं उसी प्रकार से उनके मुकुट में वो शोभा देता है मोर का पंख। कहां है वो पीतांबर जो बिजली के जैसा चमकता है, कहां है वो मोतियों की माला जो बगुलों की पंक्तियों के समान भाती है, और कहां है वो शाम जिनका तनु है जो नए अभी अभी जन्म लिए बादल को भी लज्जित करता है, कहां है वो कृष्ण। एक बार यार नयन लागे सदा तार हृदय जागे, कृष्ण तनु ये न अम्र आठा। नारी मने पैसे हाय यत्ने नाही बाहिर आय, तनु नहे सेया कुलेर काटा। एक बार यार नयन लागे, जो कोई एक बार भी श्री कृष्ण को देख लेता है तो सदा तार हृदय जागे, उनके हृदय में वो प्रमुख स्थान बना लेते हैं। और कृष्ण तनु कैसी है, कृष्ण तनु ये न अम्र आठा, ये कृष्ण का जो तनु है वो एक आम के रस के समान है, जो आमरस है उसके समान ये कृष्ण की तनु है। नारी मने पैसे हाय, जो नारियां उसको पीती है तो उसके हृदय के अंदर वो चला जाता है, यत्ने नाही बाहिर आए, कितना भी प्रयत्न करो तो भी वो बाहर नहीं निकलते हैं। तनु नहे ये कृष्ण की शरीर नहीं है, क्या है, सिया कुलेर काटा, मतलब ये बेर के वृक्ष का काटा है। आप लोगों ने अलग अलग कांटों को देखा होगा, वो ऐसे सीधे होते हैं, वो पैर में जब चुभ जाते हैं तो कांटों को निकलना आसान हो जाता है, लेकिन ये बेर का काटा ऐसा टेढ़ा होता है, वो जब पैर के अंदर यदि घुस जाता है तो बेर का काटा निकलना सबसे कठिन हो जाता है। उसकी उपमा करते हैं कि कृष्ण की जो है वो तनु कैसी है, आम्र रस के समान है और अंदर जाती है लेकिन वो कांटा बन जाती है, और कांटे के समान वो बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाती। कहां से मुरली ध्वनि नवा भ्रगर जीत जिनी, जगता करशे श्रवणे या हार। उठी धाय व्रज जन तृषि तचा तक गण, आसी पिए कांत्यमृत धार। कहां है वो मुरली की ध्वनि जो नए गरजने वाले बादलों के आवाज को भी जो है वो लज्जित कर देती है, और सारे जगत के कानों को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, उस ध्वनि को अभी हम नहीं सुनाई दे रहे हैं। और जो ध्वनि होती है वो हमें आकर्षित कर लेती है, और जो सारे तुरषित चातक गण, हम सब जो प्यासे चातक के समान है और हम उसकी ओर भागने लगते हैं, उठी धाय व्रज जन, सब हम लोग भागते है, भागते है, भागते हैं, और जब हम देखते हैं तो उस कांति का हम लोग जो है वो कांति अमृत पान हम लोग करते हैं। मोर से कला निधि प्राण रक्षा महौषधि सखी मोर ते हो सुरुतम देह जिए तहा विने धिक ए जीवने विधि करे एत विडंबन। मोर से कला निधि, वो कृष्ण सारे कलाओं के निधि सागर के समान है। प्राण रक्षा महौषधि, वो हमारी प्राणों की रक्षा करने के लिए सबसे बड़ी औषधि है। और सखी मोर ते हो सुरुतम, हे सखी वो मेरे सबसे बड़े मित्र के समान है। लेकिन देखो कैसी विडंबना है। देह जिए तहां विने, ये मेरा देह जो है वो उनके बिना जीवन जी रहा है। धिक्कार है मेरे ऐसे जीवन के ऊपर जो उनके बिना भी जी रहा है। कैसी है विधि की इतनी बड़ी विडंबना है। ऐसा मान के वो अभी जो है वो विधि को या विधाता को गाली देती है। ये जन जीते ना ही चाय तारे केने जी आए विधि प्रति उठे क्रोध शोक विधि रे करे भर्त्सन कृष्णे देना ओलाह न पड़ी भागवतेर एक श्लोक। ये जन जीते नहीं चाहे, जो व्यक्ति जीवन नहीं जीना चाहता है तारे केने जी आए, उसी को जीवित रखा जाता है। जो अपने जीवन को नहीं जीवित रखना चाहता, मरना चाहता है कृष्ण के विरह के कारण, उसे भी जीवित रखा जाता है। ऐसा मान के विधि के प्रति बड़ा क्रोध और शोक चैतन्य महाप्रभु के मन में जागृत होता है। और विधि रे करे भर्सन कृष्ण देन ओलाहन, विधि को भी भर्सना करते हैं, गाली देते हैं, और कृष्ण को भी ओलाहना करते हुए श्रीमद भागवत का एक श्लोक पढ़ते हैं जिसका अर्थ ऐसा है। श्रीमद भागवत के दशम स्कंद के 39वें अध्याय का 19वां श्लोक है। हे विधाता, तुम में तनिक भी दया नहीं है। तुम पहले तो मैत्री तथा स्नेह के द्वारा देहधारी जीवों को पास पास लेके आते हो, किंतु इसके पूर्व की उनकी इच्छाएं पूरी हो जाए तुम उन्हें विलग कर देते हो। तुम्हारे कार्यकलाप बच्चों के मूर्खतापूर्ण खिलवाड़ों के जैसे है, एक बच्चे के समान विधि की भर्सना करते हैं। और महाप्रभु इस श्लोक को फिर अर्थ बताते हैं। ना जानी स प्रेम मर्म व्यर्थ करिस परिश्रम तोर चेष्टा बालक समान तोर यदि लाग पाइये तबे तोरे शिक्षा दिए एमन येन ना करी सविधान। ना जानी से प्रेम मर्म, हे विधि हे विधाता, आप जो है वो प्रेम का व्यवहार क्या है इसे बिल्कुल नहीं जानते हैं, बिल्कुल अकल नहीं आप में। व्यर्थ करी परिश्रम, आप बिल्कुल बिना कारण के परिश्रम कर रहे हो, आपके व्यर्थ है परिश्रम, क्योंकि बिना प्रेम को जाने आप इस सृष्टि की रचना कर रहे हो। तोर चेष्टा बालक समान, आपके ये जो प्रयास है सृष्टि करने के केवल एक बालक के समान है। जैसा छोटा बालक यहाँ वहां कागज की कुछ होड़ी बनाता है, कुछ मिट्टी का बंगला बनाता है, जैसे बालक के प्रयास होते हैं, वैसे आपको अकल नहीं है और बालक के समान आप सृष्टि करते हैं, क्योंकि प्रेम व्यवहार क्या है आप ठीक से नहीं जानते है। तोर यदि लाग पाइये तबे तोरे शिक्षा दिए, यदि गलती से आप हमारे हाथ में लग गए ना है विधाता, हम आपको अच्छे से पाठ पढ़ाएंगे, हमसे आपको शिक्षा लेनी होगी, हम आपको पढ़ाएंगे कैसी सृष्टि करनी चाहिए। एमने येन ना करी संविधान, इसके बाद आप ऐसी गलत सृष्टि कदापि नहीं करेंगे, अच्छी सृष्टि करेंगे जो हमारे द्वारा आपको पाठ पढ़ाया जाएगा। तब अरे विधि तुई ही बड़ निठूर, कितना निष्ठुर, कितना क्रोधी है, कितना जो है वो निष्ठुर है ये विधि। अन्योन्य दुर्लभ जन प्रेमे कराया सम्मिलन अकृतार्थान केने करिस दूर। जो पहले ही दुर्लभ है एक दूसरे को मिलने के लिए, उन्हें आप एक बार मिला देते हैं, प्रेम करा देते हैं उनके बीच में, और जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है उनकी इच्छा पूरी होने से पहले ही उन्हें जो है वो आप विलग कर देते हैं। क्या आप बालक के समान सृष्टि करते हैं। अरे विधि अकरुणा देखा कृष्णानन नेत्र मन लोभा इला मोर क्षणे के कोरी ते पान काड़ी नीला अन्य स्थान पाप कैली दत्त अपहार। हे विधि हे निर्दयी विधि, तुम कृष्ण का सुंदर मुख हमें प्रकट करते हो और हमारे नेत्र और हमारा मन आलोभित हो जाता है उनके प्रति। क्षणे के करीते पान, अरे क्षण भर के लिए हमें पान करते हैं कृष्ण के चेहरे का, लेकिन काड़ी नीला अन्य स्थान आप निकलकर दूर जगह पर लेके जाती है, मानो आपने कृष्ण को हमें दान दिया है और दान दी गई वस्तु आप वापस ले रहे हैं। ऐसा कभी धर्म नहीं बताता है, दान में दी गई वस्तु को पुनः कभी वापस नहीं लिया जाता। पाप कैली दत्त अपहार, कितना पाप लगेगा विधाता आपको कि जो दान में दी गई वस्तु है उसे आप वापस ले रहे हैं, कृष्ण को हमसे दूर लेके जा रहे हैं, कितनी निष्ठुर ये विधि है आप। अक्रूर करे तोमार दोष, आमाय केने कर रोष, इहा यदि कह दुराचार, तुई अक्रूर मूर्ति धरी, कृष्ण नीली चूरी करी, अन्यर नहे ऐछे व्यवहार। यदि है विधि आप कहती है कि अक्रूर को दोष दो, मुझे क्यों दोष दे रहे हैं, क्योंकि अक्रूर चोरी करके कृष्ण को लेके जा रहे हैं, विधि मुझ विधाता को दोष मत दो, ऐसा यदि आप कहेंगे तो हमारा क्या उत्तर होगा उसके लिए? हम ऐसा कहें कि तुई अक्रूर मूर्ति धरी, कृष्ण नीली चोरी करी, आप अक्रूर की मूर्ति पकड़ के आए हैं, आपने अक्रूर रूप लिया हुआ है, नाम तो अक्रूर है लेकिन कार्य इतना क्रूर कर रहे हैं आप कृष्ण को हमसे दूर लेके जा रहे हैं, क्योंकि अन्य कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता है विधाता, आप ही ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन बीच में ही उनके मन में, राधारानी के मन में आ जाता है कि इस विधि का भी बेचारे का क्या दोष, ये तो कृष्ण है जो इतने निष्ठुर है जो हमें छोड़ के जा रहे हैं। अपनार कर्म दोष, तोरे की बा करी रोष, तोया मोया संबंध विदूर, ये आमार प्राणनाथ, एकत्र रही तार साथ, से ही कृष्ण है लानी ठूर। एक तो कहती कि अपनार कर्म दोष, ये तो हमारा ही दुर्भाग्य है कि हमें कृष्ण मिले। तोरे की बा करी रोष, हे विधाता हम आपका रोष, आपके ऊपर क्रोध जता के क्या करें? तो ये मोया संबंध विदूर, आप और हम तो संबंधी थोड़ी है, हम तो पहले से दूर रहने वाले लोग है, हम एकत्रित कहाँ रहे हैं? हम तो एकत्रित उनके साथ रहे हैं। या अमर प्राणनाथ, एकत्र रही यार साथ, वो मेरे प्राणनाथ है, हम लोग कुछ समय के लिए एकत्रित रहे, लेकिन से ही कृष्ण है लानी ठूर, वो कृष्ण आज इतने निर्दयी और इतने निष्ठुर कैसे हो गए जो हमें छोड़ के जा रहे हैं। अभी विधाता से उनका कैमरा रोष का अभी कृष्ण की ओर जाता है और कृष्ण को दोषी ठहराती है। सब त्यजी भजे यारे, से ही आपन हाते मारे, नारी वधे कृष्णेर नाही भय, तार लागी आमी मरी, उल्टी ना चाहे हरी, क्षणा मात्रे भंगील प्रणय। सब त्यजी भजे त्यारे, सब कुछ त्याग करके हम उनका भजन कर रहे थे, उनके ऊपर प्रेम कर रहे थे, सी अपन हाथे मारे और वो अभी अपने हाथों से हमें मार रहे हैं। नारी वधे कृष्णेर नाही भय, हम जैसे दुर्बल नारियों का वध करने में कृष्ण को बिल्कुल लज्जा और भय नहीं आता है। तार लागी आमी मरी, हम उनके लिए मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन उलटी ना चाहे हरी, वो बिल्कुल पीछे मुड़कर भी देखने के लिए नहीं तैयार है, कितने निष्ठुर हो गए हैं। क्षण मात्रे भंगी लप्रणय, एक क्षण भर में सारे प्रेम व्यापार को उन्होंने जो है वो भंग कर दिया है। कैसे है निष्ठुर कृष्ण? बाद में उनके मन में आता है, अरे कृष्ण को भी क्यों दोष देने का, यह तो हमारा ही दुर्भाग्य होगा जिसके कारण कृष्ण हमसे विलग हो रहे हैं। कृष्ण के ने करी रोष, आपन दुर्दैव दोष, पाकिल मोर ए पाप फल, ये कृष्ण मोर प्रेमाधीन, तारे कैल उदासीन, ए मोर अभाग्य प्रबल। कृष्ण के ने करी रोष, कृष्ण को मैं क्यों दोष दूं, उनके ऊपर क्यों क्रोधी हूं, आपन दुर्दैव दोष, ये तो मेरा ही दुर्दैव है। पाकिल मोर ए पाप फल, मेरे पापों का फल पक रहा है इसलिए ये मेरा ही दुर्दैव है। ये कृष्ण मोर प्रेमाधीन, तारे कैल उदासीन, जो कृष्ण मेरे अधीन थे आज तक, मेरे बोल के ऊपर नाचा करते थे, लेकिन आज ये बिल्कुल उदासीन हो गए मेरी तरफ, यही मोर अभाग्य प्रबल। मैं समझ गई कि मेरा अभाग्य कितना प्रबल है, समझ गई। ए मत गौर राय, विषादे करे हाय हाय, हा हा कृष्ण तुम्ही गेला कती, गोपी भाव हृदये, तार वाक्य विलापये, गोविंद दामोदर माधवेती। ए मत गौर राय, इस प्रकार से श्री गौरांग महाप्रभु विषादे करे हाय 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 करके वो विषाद किया करते थे, हा कृष्ण तुम्ही कहां गेला, कहां गए कृष्ण, इस प्रकार से महाप्रभु दिव्य उन्माद करते और विलाप करते। गोपी भाव हृदय तार वाक्य विलाप है, गोपियों के भाव में चले जाते और विलाप करते हुए कहते गोविंद दामोदर माधवेती। गोपियों का यही स्वभाव था, जब भी वो कुछ कार्य करती तो उस कार्य में उनका मन नहीं रहता था, उनका मन हमेशा रहता था कृष्ण के नाम रूप गुण लीला, उसमें ही सज्जित रहता था। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वशात अवोचत गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, वो बेचने के लिए निकलती थी क्या, दध्यादिकम दूध दही मक्खन ले लो ऐसा बेचने के लिए रास्ते से निकलती थी, लेकिन वो मैं दूध लेके आई हूँ, दूध चाहिए दूध, ऐसा चिल्लाने की वजह वो क्या चिल्लाती थी, गोविंद दामोदर माधव, ऐसे वो चिल्लाती थी। जब वो बेचने के लिए जाती थी तो दूध दही बेचने के लिए जा रही है, लेकिन दूध दही ऐसे नहीं चिल्लाती थी, वो गोविंद दामोदर और ऐसे चिल्लाती थी। इसी प्रकार से महाप्रभु अभी उनके ही भाव में प्रवेशित होके गोविंद दामोदर माधव इति ऐसा जो है वो चिल्लाते थे और प्रलाप किया करते थे। तबे स्वरूप राम राय करी नाना उपाय महाप्रभु करे आश्वासन, गाये न संगम गीत प्रभुर अफिर आईला चित प्रभुर किछु स्थिर हैला मन। उस समय स्वरूप दामोदर और राय रामानंद कुछ उपाय करते हैं और महाप्रभु को आश्वस्त करते हैं, महाप्रभु विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, और वो राधा और कृष्ण का कोई संगम करने वाला गीत गाते हैं और महाप्रभु को जो है वो इस प्रकार से वो शांत करके है और उनका मन स्थिर हो जाता है। ऐ मत विलापिते अर्धरात्रि गेला गंभीराते स्वरूप गोसाई प्रभुरेशो याईला। इस प्रकार से आधी रात गुजर जाती है और स्वरूप दामोदर राय रामानंद महाप्रभु को सुला देते हैं और राय रामानंद अपने घर चले जाते हैं और गोविंद और स्वरूप दामोदर वही गंभीरा कमरे के बाहर ही जो है वो सो जाते हैं महाप्रभु को सुलाने के पश्चात। लेकिन महाप्रभु को कहां नींद आने वाली है, इतना विरह भाव में वो तड़प रहे हैं। प्रेमावेश महाप्रभुर गर गर मन नाम संकीर्तन करी करे न जागरण, उनका मन गर 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 घूम रहा था और प्रेम आवेश में संकीर्तन वो कर रहे थे। विरह में इतने व्याकुल हो जाते हैं महाप्रभु कि क्योंकि दीवार दरवाजा बंद है, जाने उनको बाहर जाना है, उद्वेग है, विरह है कृष्ण से, कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। यहां जाते थे दीवार से टकरा जाते थे, वहां जाते थे उस दीवार से टकरा जाते थे और इस तरह वो टकराते थे, अपना सर अपना मुख वो दीवारों से रगड़ाते थे, नाक गाल कपाल सब जगह पे उन्हें जो है वो जख्म हो जाती है और रक्तों की धार जो है वो उनके मुख से बहने लगती है और गो गो करके आवाज आता है और स्वरूप दामोदर अचानक आवाज सुनते हैं और आवाज सुनने के पश्चात स्वरूप दामोदर दिया लगा के घर के अंदर चले जाते हैं और गोविंद को लेके, तब देखते हैं महाप्रभु इस अवस्था में दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं, विलाप करते हैं और महाप्रभु को पूछते, महाप्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ये क्या करके रखा है, अपना क्या हाल बना के रखा है। महाप्रभु कहते हैं कि मैं कृष्ण के विरह में मैं उद्विग्न हो गया था, मैं घर से बाहर जाना चाहता था लेकिन मैं जहां जहां बाहर जा रहा था वहां वहां दीवार आ रही थी बीच में, इसलिए ये जख्म हो गया है और मुझे पता भी नहीं चला कि जख्म होके यहाँ पे रक्त बह रहा है, मुझे पता भी नहीं चला। स्वरूप दामोदर ने जब यह सुना, स्वरूप दामोदर ने दूसरे दिन कई भक्तों के साथ जो है वो मंत्रणा की, विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करके उन्होंने ये निष्कर्ष पे आए कि आज से चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके कमरे के अंदर कोई एक व्यक्ति सोएगा और वो व्यक्ति निर्धारित किया गया शंकर पंडित। तो महाप्रभु से विनती की और कहा कि आप शंकर पंडित के साथ ही सोएंगे और फिर उस दिन से जो है वो महाप्रभु शंकर पंडित के साथ उस कमरे के अंदर सोया करते थे। शंकर पंडित बहुत ही सरल स्वभाव के महाप्रभु के भक्त थे, वो रात भर जगा करते थे और महाप्रभु के चरण संवाहन पांच सेवा किया करते थे और महाप्रभु उनके शरीर के ऊपर अपने पैर रखकर सो जाते थे, इसलिए उनका नाम हुआ प्रभु पादोपाधान। आदि लीला में प्रश्न था ना चैतन्य महाप्रभु के जूते कौन है या पादोपाधान कौन है, तो वो है शंकर पंडित, इस लीला से हमें समझ में आता है। तो महाप्रभु उनके शरीर के ऊपर पैर रख के सो जाते थे और शंकर पंडित को समझ में नहीं आता था कब महाप्रभु सोए या जगे, वो उन्हें नींद लग जाती थी। उन्हें जब नींद लग जाती थी तो बिना कुछ चादर ओढ़े हुए ऐसे ही सो जाते थे, तो महाप्रभु जगते थे और रजाई उनके सोए हुए शरीर के ऊपर डालते थे और कुछ समय के पश्चात पुनः उठ जाते थे शंकर पंडित, देखते थे महाप्रभु है कि नहीं और पुनः महाप्रभु के चरणों की सेवा करते थे। और जब से फिर शंकर पंडित वहां पर सोने लगे उस समय के पश्चात महाप्रभु उनका रात को ऐसा गो गो करके विलाप करना और अपना सिर दीवारों को रगड़ना ये सब जो है वो कम हो जाता है। ई मत महाप्रभु रात्रि दिवसे प्रेम सिंधु मग्न रहे कबू डूबे भासे। इस प्रकार से महाप्रभु दिन और रात जो है वो प्रेम के समुद्र में कभी डूबते थे तो कभी तैरते थे, कभी डूबते थे कभी तैरते थे। इस प्रकार से हमेशा उस कृष्ण प्रेम के सागर में जो है वो गोते खाते थे। एक दिन की बात है, वैशाख महीने की पूर्णिमा, आज शनिवार है, पिछले गुरुवार को ये वैशाख पूर्णिमा थी। उसी एक दिन वैशाख पूर्णिमा की रात को चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में सारे भक्तों को जो है वो लेके जाते हैं और वहां पर उनका कृष्ण का चर्चा चलता है। और क्या वो सुंदर वन था, प्रफुल्लित वृक्षवल्ली ये न वृंदावन शुक शारीपिक भृंग करे आलापन। सारी वृक्षवल्लियां जो है वो प्रफुल्लित हो गई थी, मानो वृंदावन लग रहा था। शुक शारी तोता तोतियां भृंग सारे पक्षी पक्षी वहां पर जो है उनका कोलाहल चल रहा था। सारे पुष्पों की सुगंध वहां पर आ रही थी, महक रही थी और जो मंद हवा चल रही थी वो उस गंध को यहां वहां लेके जा रही थी। और उसके साथ साथ ये मंद हवा मानो गुरु बन के उन लताओं को नृत्य कैसे करना चाहिए इसे सिखा रही थी। और पूर्ण चंद्रमा उसका प्रकाश, उसके प्रकाश में सारे वृक्ष उनके पत्तियां सारी लताएं जो है वो झलमल कर रही थी, जगमगा रही थी, मानो सारे छह के छह ऋतु वहां पर उपस्थित हो। और उसमें भी प्रमुख रूप से ऋतुओं का राजा वसंत वहां पर जो है वो प्रधान रूप में वहां पर था। चैतन्य महाप्रभु अतीव प्रसन्न थे अपने भक्तों के साथ और उन्होंने ललित लवंग लता इससे शुरू होने वाले एक जो गीत गोविंद है उसका एक पद गाने के लिए भक्तों को कहा और स्वयं महाप्रभु जो है वो नृत्य करना प्रारंभ किए। और नृत्य करते करते घूमते घूमते पूरे वन में महाप्रभु यहां जा रहे वहां जा रहे, घूमते 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 महाप्रभु एक अशोक वृक्ष के नीचे आ जाते हैं और वहां पे अचानक उन्हें कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। जैसे ही महाप्रभु को कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं महाप्रभु भागते 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 कृष्ण की दिशा में जाते हैं और जैसे ही कृष्ण को पकड़ने वाले होते हैं कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं। अभी कृष्ण अंतर्धान हो गए, महाप्रभु ने कृष्ण का गंध आस्वादन किया था और कृष्ण को अभी अंतर्धान होने के पश्चात महाप्रभु वहीं पर अचेत अवस्था में जो है वो गिर जाते हैं। और कृष्ण के गंध से सारा उद्यान अभी जो है वो वहां पर कृष्ण के गंध की महक छा रही है। कृष्ण गंध लुब्धा राधा सखी रे ये कहिला से श्लोक पड़ी प्रभु अर्थ को रिला। फिर महाप्रभु को जब सचेत किया गया तब जो है वो कृष्ण गंध लुब्धा राधा, श्रीमती राधा रानी जो कृष्ण के गंध से लुब्ध थी और वो गंध अभी उनसे दूर गई थी, उनका जो विलाप श्रीमती राधा रानी विशाखा से कहती है वही विलाप चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से कहते हैं, जो गोविंद लीलामृत में वर्णन आता है वही श्लोक बताते हैं और उसके अर्थ का आस्वादन अपने भक्तों के साथ लेते हैं। क्या था वो गंध की महिमा, कस्तूरी का नीलोत्पल तार एई परिमल तहा जिनी कृष्ण अंग गंध व्यापे चौद भुवने करे सर्व आकर्षणे नारी गणेर आंखी करी अंध। कस्तूरी का नीलोत्पल ये दो सबसे सुगंधी वस्तुएं हैं, कस्तूरी और नीला कमल, इन दोनों के एकत्रित सुगंधि को जो तार यही परिमल तहा जिनी कृष्ण अंग गंध, कृष्ण के अंग की जो गंध है उसने इन दोनों की एकत्रित सुगंध को भी जीत लिया है ऐसी है। और क्या किया है, व्यापे 14 भुवने 14 लोगों को उसने व्याप्त कर लिया है, करे सर्वे आकर्षणे और इस गंध ने सबको आकर्षित कर लिया है, नारी गणेर आंखी करी अंध, इस गंध ने सारे नारियों को अंध कर दिया है। सखी है कृष्ण गंध जगत माता, यह सखी राधारानी कहती है कि इस कृष्ण की गंध ने सारे जगत को मोहित कर लिया है। नारी रना सा ते पाशे सर्व काल तहा वैसे कृष्ण पाश धरी लिया याय। ये नारियों की नथुनों में या नासिकाओं में जो है वो हमेशा वास करती है और पकड़ पकड़ कर इन्हें जो है वो कृष्ण के पास जाके सौंप देती है। ऐसी है ये कृष्ण की गंध। कौन कौन से अंग है जो कृष्ण के गंध परिवर्तित करते हैं? नेत्र नाभिवदन करयुग चरण यही अष्ट पद्म कृष्ण अंगे। कर्पूर लिप्त कमल तार यचे परिमल से गंध अष्ट पद्म संगे। ये आठ अंग है कृष्ण के जिन्हें आठ कमल के साथ कहा गया है जो गंध जो है वो गंध को फैलाते हैं। कौन से है आठ अंग? सबसे पहले दो नेत्र, एक उनकी नाभि, एक उनका वदन और उनके दो हाथ और दो चरण। तो ऐसे जो है वो आठ अंग भगवान श्री कृष्ण के जो है वो दिव्य सुगंध को फैलाते हैं। कर्पूर लिप्त कमल तार यचे परिमल। कर्पूर के साथ यदि कमल को मिला दे तो उसकी जो गंध है उसे भी शर्मिंदा कर दे। ऐसे ये कृष्ण के दिव्य अंगों की जो है वो गंध है। हेम किलित चंदन तहा करी घर्षण ताहे अगुर कुंकुम कस्तूरी। कर्पूर सने चर्चा अंगे पूर्व अंगेर गंध संगे मिली तारे ये न कैला चूरी। स्वर्ण के जैसा चंदन और तहा करी घर्षण, उसे घर्षण किया गया है सोने के ऊपर चंदन को और उसमें अगुरु कुंकुम और कस्तूरी मिला दी है। तो देखिए चंदन, अगुरु, कुंकुम और कस्तूरी, ये चारों की सुगंध कितनी महान है। कर्पूर और उसमें भी यदि कर्पूर मिलाया जाए और इनका कृष्ण के दिव्य अंगों को लेप चढ़ाया गया है और ये लेप जो है उसकी सुगंध और कृष्ण के पहली सी आने वाली सुगंध, इन दो सुगंधों का मिलाप हो गया है। मानो ये बाहर वाली सुगंध ने अंदर वाली सुगंध को आच्छादित कर दिया है। हरे नारी तनु मन नासा करे घूर्णन खासाए निवी छुटाए केश बंध। करिया आगे बा उरी नाचा यज गत नारी हे ना डाका तिया कृष्णांग गंध। हरे नारीर तनु मन, ये सारे जगत के नारियों का उनके शरीर और उनके मन को आकृष्ट कर लेती है। और नासा करे घूर्णन, नासिका भ्रमित होती है कहां मिलेगी गंध, कहां मिलेगी गंध। खासाए निवी छुटाए केश बंध, हमारे कटिबंध और हमारे केश जो है वो खुल रहे है भागने के कारण। करिया आगे बावरी, हमें बावरी बना देती है नाचा या जगत नारी, सारी जगत के नारियां बावली होके नाचते नाचते जा रही है। हेना डाका तिया कृष्णांग गंध, कृष्ण के जो गंध है दिव्य गंध वो एक डाकू के समान है जो इनको जो है वो खींच के लेके जा रही है। से गंध वश नासा सदा करे गंधेर आशा कबू पाए कबू नाही पाय। पाइले पिया पेट भरे प्यू प्यू तबू करे ना पाइले तृष्णाई मरियाय। सही गंध वश नासा, हमारे सबके नाक जो है वो कृष्ण के जो गंध है उसके वश हो गए हैं। सदा करे गंधेर आशा, हमेशा ये कृष्ण के गंध की आशा करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है, कबू पाए कबू नहीं पाए, कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता है। पाइले पिया पेट भरे प्यू प्यू तबू करे, जब पाता है हमारे नासिकाओं के कृष्ण की गंध जब मिल जाती है तब जो है वो मन भर के पी लेते हैं और प्यू प्यू और चाहिए और चाहिए और चाहिए ऐसा कहते वो और मांगते रहते हैं। और ना पाइले तृष्णाए मरियाय, जब नहीं पाते है तो तृष्णा के कारण हमारे नाक मर जाते हैं। मदन मोहन नाट पासरी गंधेर हाट जगन नारी ग्राह केलो भाय। विना मूल्य देय गंध गंध दिया करे अंध घर याईते पथ नाही पाय। मदन मोहन ये जो बड़े अभिनेता है, मदन मोहन क्या कर रहे हैं, क्या किया है उन्होंने, क्या नाटक रचा है, क्या क्या करते हैं ये? पासरी गंधेर हाट, एक गंध की दुकान खोल के रखी है उन्होंने, दिव्य गंध की दुकान खोल के रखी है। और उसके ग्राहक कौन है? जगन नारी ग्राहक केलो भाय, सारे जगत की नारियों को लोभ उत्पन्न करके ग्राहक बना के वहां पर आकर्षित कर रहे हैं। विना मूल्य देय गंध, और ये फ्री में बांट रहे हैं, कुछ मूल्य भी नहीं मांग रहे हैं, फ्री में मुफ्त में इस गंध को बांट रहे गंध दिया कोरे अंध। और गंध हम लोग यदि पा लेते हैं तो अंध हो जाते हैं। और क्या होता है, जब हम घर वापस लौटने के लिए निकलते तो क्या होता है, घर याईते पथ नहीं पाया, तो घर जाते समय हमें रास्ता ही दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम इतने अंधे हो जाते हैं। ऐसी मदमत्त करने वाली कृष्ण की दिव्य गंध है। एमत गौर हरि गंधे कैल मन चुरी भृंग प्राय इति उति धाय याय वृक्ष लता पाशे कृष्ण स्फुरे सेई आशे कृष्ण न पाय गंध मात्र पाय। एमत गौर हरि, इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु गौर हरि गंधे कैल मन चुरी, गंध ने उनकी मन को जो है वो चुरा लिया है। भृंग प्राय इति उति धाय, उस वन में हम लोग थे ना वैशाख महीने की पूर्णिमा में, उस समय जो जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में अभी भी महाप्रभु है, वो जो भी गंध मिला था उन्हें इस प्रकार से श्लोकों का आस्वादन कराया और वो गंध को ढूंढते ढूंढते यहाँ जा रहे वहां जा रहे। याय लता वृक्ष पाशे कृष्ण स्फुरे से ही आशे, कृष्ण मुझे मिलेंगे इस प्रकार से वो किसी लता के पास जा रहे, किसी वृक्ष के पास जा रहे, भाग रहे, लेकिन क्या हो रहा है, कृष्ण ना पाए गंध मात्र पाय, कृष्ण को तो नहीं पा रहे, लेकिन जो कृष्ण की दिव्य गंध वहां पर थी उसी गंध का वो केवल आस्वादन कर रहे हैं। स्वरूप राम आनंद राय प्रभु नाचे सुख पाय ए मते प्रातः काल होईल। स्वरूप राम आनंद राय करी नाना उपाय महाप्रभु बाह्य स्फूर्ति कईल। इस प्रकार से स्वरूप और रामानंद राय अलग अलग गीत गाए उन्होंने, महाप्रभु ने वहां पर नृत्य किया दिव्य उन्माद में, और इसी प्रकार से जो है वो प्रातः काल हो गई और सुबह हो गई। तो अभी सुबह का समय तो महाप्रभु को बाह्य चेतना में लाना ही होगा। स्वरूप रामानंद राय करी नाना उपाय, अलग अलग उपाय उन्होंने किए और महाप्रभु को जो है वो बाह्य स्फूर्ति में उन्होंने जो है वो लाया। मातृभक्ति प्रलापन भित्य मुख घर्षण कृष्ण गंध स्फूर्ते दिव्य नृत्य एई चारी लीला भेदे गाइल एई परिच्छेदे कृष्ण दास रूप गोसाई भृत्य। एई चारी लीला भेदे गाइल एई परिच्छेदे, मैंने चार लीलाओं को इस परिच्छेद इस अध्याय में गाया है। कृष्ण दास रूप गोसाई भृत्य, मैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो रूप गोस्वामी का भृत्य उनका दास हूं, मैंने इसी एक अध्याय में चार लीलाओं का वर्णन किया है। कौन सा है, सबसे पहला मातृभक्ति, किस प्रकार से जगदानंद पंडित को उन्होंने नवद्वीप में भेजा और माता को अपना प्रणाम भेजा और प्रसाद दिया, जगन्नाथ का प्रसादी वस्त्र भी दिया, इस प्रकार से मातृभक्ति पहला। दूसरा है प्रलापन, किस प्रकार से उन्होंने दिव्य प्रलाप किया उसका वर्णन हमने सुना कि मथुरा का दृश्य उनके सामने प्रकट हो गया था, मानो कृष्ण वहां से जा रहे अक्रूर चोरी कर रहे और उस दृश्य को देख के महाप्रभु ने जो राधारणी के भाव में कैसे प्रलाप किया वो। तीसरा है भृत्यमुख घर्षण, किस प्रकार से घर के अंदर भित्ति को उन्होंने अपना मुख का जो है घर्षण किया और जख्मी किया अपने आप को। और चौथा है कृष्ण गंध स्फूर्ते दिव्य नृत्य, कृष्ण की गंध का उन्होंने आस्वादन किया और उस आस्वादन को उन्होंने किस प्रकार से जो है वो अलग अलग श्लोकों के ऊपर उन्होंने नृत्य किया। तो इन चार लीलाओं को कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैंने एक ही अध्याय में आप लोगों को सुनाया है। ऐ मत महाप्रभु पाइया चेतन स्नान करी कैल जगन्नाथ दर्शन। इस प्रकार से फिर महाप्रभु जो है वो स्नान करते हैं और स्नानादि के पश्चात वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अलौकिक कृष्ण लीला दिव्य शक्ति तार तरकेर गोचर न है चरित्र याहार। भगवान श्री कृष्ण की और उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जो है वो बिल्कुल अलौकिक है, दिव्य है और कई सारी शक्तियां उनके अंदर है, दिव्य शक्तियों से संचारित है ये लीला। लेकिन कविराज गोस्वामी सूचित कर रहे हैं कि तर्क के द्वारा ये लीलाएं गोचर नहीं है, इन्हें तर्क के द्वारा जो है वो नहीं समझा जा सकता। यही प्रेम सदा जागे यहार अंतरे पंडिते ह तार चेष्टा भूजीते ना पारे। जब किसी के व्यक्ति के हृदय में कृष्ण का दिव्य प्रेम जागृत हो जाता है तब बड़े से बड़ा विद्वान भी उस व्यक्ति के कार्यकलापों को जो है वो नहीं समझ सकता। विद्वान व्यक्ति भी कृष्ण प्रेम जिस व्यक्ति के हृदय में जागृत हो जाता है उनके कार्यकलापों को नहीं समझ सकता। अलौकिक प्रभु रचेष्टा प्रलाप शून्या तर्क ना करिय शून विश्वास करिया। जिस प्रकार से महाप्रभु के जो कार्यकलाप मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उनका जो है वो आप सामान्य मत समझना, उन प्रलाप और उन चेष्टाओं को आप सामान्य नहीं समझना, और तर्क ना करी हा शुन विश्वास करिया। बिल्कुल आप तर्क मत करो और विश्वास पूर्वक इन सारे वृत्तांतों को सुनो। इहार सत्यत्वे प्रमाण श्री भागवते श्री राधार प्रेम प्रलाप भ्रमर गीताते। और इसका प्रमाण हमें श्रीमद भागवत में भी मिल सकता है, जो श्रीमती राधारानी भ्रमर गीत गाई थी श्रीमद भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में जो है वो 12 से लेकर 21वें जो श्लोक है वो भ्रमर गीत नाम से जाने जाते हैं। श्रीमद भागवत में कई सारे गीत है, भ्रमर गीत है, गोपी गीत है, वेणु गीत है, उन सारे गीतों को जो है वो महाप्रभु आस्वादन किया करते थे, लेकिन कविराज गोस्वामी उन्हें ज्यादा विस्तार से नहीं बताए क्योंकि ग्रंथ ज्यादा बड़ा नहीं हो और हम डर कर उस ग्रंथ को नहीं पढ़े, इसलिए कविराज गोस्वामी ने उसे संक्षिप्त ही रखा है और कहते हैं कि भ्रमर गीत जो श्रीमती राधा रानी ने जो भ्रमर के साथ गाया था वो जो है वो इसका प्रमाण है। महिषी गीत ये न दशमेर शेषे पंडित न भुजे तार अर्थ विशेषे। महिषी मतलब द्वारका की रानिया, द्वारका की रानियों के जो दशम स्कंद में आखिर में जो गीत आता है वो भी जो है वो विशेष अर्थपूर्ण है और उसे भी जो बड़े बड़े पंडित जो है वो नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते। और दशम स्कंद के 90वां अध्याय जो है वो उसमें 15 से लेकर 24 तक जो है वो इन महिषियों का गीत बताया गया है, उनका भी दिव्य विलाप जो है वो उसमें वर्णन आता है। महाप्रभु नित्यानंद दोहार दासेर दास यारे कृपा करें तार हय इथे विश्वास। चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु इनके दासों के दासों का कोई यदि दास बनता है और उनकी कृपा यदि किसी व्यक्ति को मिल जाती है तब जाके किसी व्यक्ति के हृदय में जो है वो विश्वास जो है वो इन लीलाओं के प्रति उत्पन्न हो सकता है। श्रद्धा करी शुन इहा शुनिते महासुख खंडी बे आध्यात्मिकादि कूतर्कादि दुख। इसलिए इन कथाओं को श्रद्धा पूर्वक जो है वो सुनने का प्रयास करो, शुनिते होय महासुख। जो सुनते हैं तो महान सुख की अनुभूति होती है और क्या होता है खंडी बे आध्यात्मिकादि और कूतर्कादि दुख। हमारे आध्यात्मिक मतलब हमारे शरीर और मन द्वारा दिए गए क्लेश, आदि भौतिक और आदि दैविक, इन सारे क्लेशों का खंडन हो जाता है और जो कुतर्किक जो है वो सारे मिथ्या तर्कों का जो दुख है वो भी जो है वो दूर हो जाता है क्योंकि हमें महासुख जो है वो मिल जाता है चैतन्य चरितामृत के आस्वादन से। चैतन्य चरितामृत नित्य नूतन शुनिते शुनिते जुड़ाए हृदय श्रवण। नित्य नवीन जो है वो चैतन्य चरितामृत हमें लगता है, शुनिते शुनिते जुड़ाए हृदय श्रवण। जो सुनते जाते हैं बार बार सुनने से हमारा हृदय और हमारे कान जो है वो शांत हो सकते हैं, ऐसा है ये दिव्य चैतन्य चरितामृत। इसलिए कई सारे भक्त भी जो है वो इस प्रकार से जो है वो चैतन्य चरितामृत का ही जो है वो आस्वादन किया करते थे। मुझे याद है जब हम प्रवचन सुने थे परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज जब इस धरातल से जो है वो गमन करने वाले थे, छोड़ने वाले थे, उस समय कई केवल परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वो उनके संग में थे और वो दोनों केवल जो है वो नित्य रूप से चैतन्य चरितामृत ही किया करते थे। और भक्ति तीर्थ महाराज ने उस समय लिखा था, वो लिखते थे कि हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ नहीं रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं, हम लोग चैतन्य चरितामृत में जी रहे हैं, हम जीवन जी रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वह चैतन्य चरितामृत कितने सारे भक्तों के प्राण बने हुए थे। सरस्वती ठाकुर इनका यह प्रिय था इसलिए वो कहते थे कि आप इसे 100 बार कम से कम पढ़िए सुनिए चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत। श्रील प्रभुपाद जी का भी यह प्रिय ग्रंथ था इसलिए श्रीमद भागवत को बाजू में रखकर उन्हें चैतन्य चरितामृत के ऊपर टीका पूर्ण कर दी। और यह चैतन्य चरितामृत नित्य नूतन हमारे लिए अभी जो है वो आस्वादन करने के लिए शुनिते शुनिते जुड़ाए हृदय श्रवण, हमारे हृदय और हमारे कानों को तृप्त कर सकता है, ऐसी दिव्य शक्ति इस चैतन्य चरितामृत में है। और कविराज गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार से श्री रूप रघुनाथ पदे यारास चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। मैं इस चैतन्य चरितामृत का इस श्लोक को पूरा करता हूँ रूप और रघुनाथ इनके चरणों की धूली की आशा रखते हुए। इसी अध्याय के पहले श्लोक में चैतन्य चरितमृत के इस 19वें अध्याय के पहले श्लोक में कविराज गोस्वामी ने संपूर्ण अध्याय का जो है वो सारांश करते हुए चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया हुआ है। वंदे तम कृष्ण चैतन्यम मातृ भक्त शिरोमणिम प्रलप्य मुख संघर्षी मधुद्याने ललासयः। वंदे तम कृष्ण चैतन्यम, उन श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। कौन है वो? मातृ भक्त शिरोमणिम। जितने सारे अपने आप को मातृभक्त कहते हैं कि मैं अपनी माता का भक्त हूँ, उन सब के जो है वो शिरोमणि, मातृभक्त शिरोमणि। और प्रलप्य, उन्होंने जो है वो दिव्य प्रलाप किया। तो पहली लीला मातृभक्त शिरोमणि की, दूसरी लीला प्रलाप, दिव्य प्रलाप उन्होंने जो किया कि किस प्रकार से मथुरा के लिए कृष्ण अभी गमन कर रहे वृंदावन से, उसका दिव्य प्रलाप। मुख संघर्षी, उन्होंने जो है वो दिव्य उन्माद में दीवार के ऊपर अपने मुख को रगड़ा और जख्मी बना लिया अपने आप को, मुख संघर्षी। मधुद्याने ललासयः, और जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में किस प्रकार से उन्होंने कृष्ण का गंध का आस्वादन किया और वहां पर जो है उन्होंने नृत्य किया, उन चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आखिर में जो उन्होंने बताया कि मैं चार लीलाओं का इसमें वर्णन किया हुआ है, उन्हीं चार लीलाओं का वर्णन वो शुरुआत में भी करते हैं और कहते हैं कि ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी मैं वंदना करता हूँ। तो इस प्रकार से हमारा 19वां अध्याय जो है वो समाप्त हो जाता है और कल हम मिलेंगे हमारा चैतन्य चरितामृत का आखिरी अध्याय 20वां, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है चैतन्य शिक्षा अष्टकम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो उपदेश दिए हुए है, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से कहा आप लिखिए, चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा आप ग्रंथों को लिखिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं एक भी ग्रंथ जो है वो नहीं लिखा है। और केवल कुछ इस धरातल पर चैतन्य महाप्रभु छोड़ के गए हैं, तो वो केवल ये है चैतन्य शिक्षाष्टकम। ये 8 श्लोक ये इतने महत्वपूर्ण है, उन 8 श्लोकों की हम लोग चर्चा प्रारंभ करने वाले है कल से। तो यदि आपको उनका आस्वादन करना है और उनके बारे में सुनना है, तो हम मिलेंगे कल शाम को ठीक 5:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की।